प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमें आशा है आप आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से दूसरे राजा की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 9वें और 10वें अध्याय को देखेंगे। 9वें अध्याय का हमारा शीर्षक होगा इसराइल का राजा होने के लिए येहू नामक व्यक्ति का अभिषेक। स्वागत। आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व अपने मनों की तैयारी के लिए हम परमेश्वर पिताजी से प्रार्थना करें। हम उनसे सामर्थ मांगें। हे दयालु और प्रेमी पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। हमारे मध्य में होने वाली समस्त बाधाओं को प्रभु जी आप दूर कर दें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है, क्लेश में है, किसी रोग से पीड़ित है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उनका भी छुटकारा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए हम दूसरे राजा की पुस्तक के 9वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है इसराइल का राजा होने के लिए यहू नामक व्यक्ति का अभिषेक। जैसा कि हम आज नवे अध्याय को आरंभ कर रहे हैं, हमको इस बात को अपने मस्तिष्क में रखना है कि यहूदा का राजा अहज्या इस समय यिज्रेल में है, जहां वो इसराइल के राजा योराम से भेंट करने को गया है, जो कि युद्ध में सीरियाई सैनिकों द्वारा घायल हो गया था और उसके गहरे घाव लगे थे। अब यह स्पष्ट है कि उसमें कोई संदेह नहीं कि योराम एक गंभीर रोगी था, जैसा कि हमने 28 और 29 पदों में पढ़ा है, जहां पर इस तरह से लिखा था कि योराम राजा लौट गया कि यिज्रेल में उन घावों का उपचार कराए जो उसे सीरिया के राजा हजाइल से लड़ते समय रामोत में सीरिया के हाथ लगे थे। तब यहूदा के राजा यहोराम के पुत्र अहज्या अहाब के पुत्र योराम को देखने यिज्रेल को गया, क्योंकि योराम घायल था। यहां से हम अपने बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे राजा उसके 9 अध्याय के 1-10 पदों में हम यहोशापात के पुत्र यहू के अभिषेक के विषय में पढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य विशेष को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति विशेष का अभिषेक किया है, और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य हम 7 पद में पाते हैं। यहां लिखा है, तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना कि मैं अपने दास नबियों वरन यहोवा के सब दासों के लहू का बदला लूं जो इजाबेल ने बहाया। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक उद्देश्य विशेष को पूर्ण करने के लिए एक व्यक्ति विशेष का अभिषेक करते हैं। मेरे मित्र, प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया, और यह अभिषेक उन्होंने मानव जाति के छुटकारे की कीमत को उसके मूल्य को चुकाने के लिए किया। उनका अभिषेक इसलिए हुआ कि वे पापी मानव के उद्धार अर्थात मोक्ष के लिए क्रूस पर बलिदान हों। उनका अभिषेक इसलिए हुआ कि वे शैतान के कार्यों को नाश करें, उसे पराजित करें। आज परमेश्वर और मेरा आपका भी अभिषेक करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को जगत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में उनके सहकर्मी बने। तब 1-4 पदों में हम यहू के अभिषेक के विषय में पढ़ते हैं। एलिशा के युवा नबी ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया और उसने यहू का अभिषेक किया। हो सकता है आपका विचार हो कि ये कार्य एलिशा को स्वयं ही करना चाहिए था, क्योंकि शाऊल नबी ने स्वयं ही जाकर राजा शाऊल तथा दाऊद का अभिषेक किया था। परंतु यहां बात स्पष्ट है कि एलिशा ये कार्य गुप्त रूप से करना चाहता था, और इसलिए उसने अपने युवा चेले को भेजा था कि उस पर कोई संदेह ना करे। इस प्रकार यहू का राजा होने के लिए अभिषेक हो गया है। जब आप अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहू उन खूनी व हत्यारों में से एक है जिनकी चर्चा पवित्र शास्त्र बाइबल में की गई है। वह दुष्टों की श्रेणी में था, फिर भी उसने अनेक बातों में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा कि वह अहाब के घराने के प्रत्येक पुरुष को नष्ट करेगा, इसराइल में से उनका अस्तित्व ही मिटा डालेगा, और इस कारण इस कार्य विशेष के लिए यहू का अभिषेक हुआ था। यहू को अहाब के घराने को नाश करना था, किंतु 10वां पद हमको बताता है कि ईजाबेल को भी परमेश्वर दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा, वो भी नहीं बच सकेगी, उसे परमेश्वर के न्याय का सामना करना होगा, जैसा लिखा है, और इजाबेल को यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खा जाएंगे और उसको मिट्टी देने वाला कोई ना होगा। नबी इस बात की घोषणा करके वहां से भाग जाता है, और तब हम 11वें पद से आगे पढ़ते हैं। तब यहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास बाहर आया और किसी ने उससे पूछा, क्या सब कुछ कुशल है? वह पागल तेरे पास क्यों आया था? अर्थात वो परमेश्वर के नबी के विषय में पूछता है। उसने उनसे कहा, तुम तो उस व्यक्ति और उसकी बातों को भली भांति जानते हो। उन्होंने कहा, झूठ, अब हमें बतला दे। उसने कहा, उसने मुझसे ऐसा कहा है, यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझे इसराइल पर राजा अभिषिक्त किया है। तब उन्होंने शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र उतारे और उसके नीचे सीढ़ी पर ही बिछाए। मित्रवर, जब सबको ये ज्ञात हो गया कि यहू अभिषिक्त राजा है, तो वहां हलचल मच गई। वे सब क्रियाशील हो गए और उन्होंने तुरही फूंकी और घोषणा की कि यहू राजा है, और अपने वस्त्रों को उसके मार्ग में बिछा दिया। हम यरूशलेम में विजय प्रवेश के समय प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यहूदी जनता ने ऐसा ही व्यवहार किया था, वो भी दृश्य याद आता है। अब यहू इसराइल का राजा है, उधर योराम यज़रेल में घायल अवस्था में पड़ा, अपने घावों का उपचार करा रहा है, और यहूदा का राजा अहज्या उससे भेंट करने को वहां पहुंचा हुआ है। और अब देखते हैं कि यज़रेल में क्या घटना घटने वाली है। 14वें पद से आगे हमारे साथ देखिए। इस प्रकार निमशी के पौत्र और यहोशापात के पुत्र यहोशू ने योराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। योराम तो सारे इसराइल समेत सीरिया के राजा हजाइल से रामोत गिलाद की रक्षा कर रहा था, परंतु योराम राजा तो यज़रेल लौट गया था कि उन घावों का उपचार कराए जो सीरिया के राजा से युद्ध करते समय सीरियाइयों के हाथ से लगे थे। इसलिए यहू ने कहा, यदि तुम्हारा यही विचार है तो यज़रेल में बतलाने के लिए किसी को भी इस नगर से बचकर निकलने या भागने ना दिया जाए। तब यहू रथ पर सवार होकर यज़रेल को गया, क्योंकि योराम वहां घायल पड़ा था और यहूदा का राजा अहज्या योराम को देखने वहां आया था। 17वें पद से हम पढ़ते हैं, यज़रेल की मीनार पर पहरेदार खड़ा हुआ था। उसने यहू और उसके दल को आते हुए देखा और कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक घुड़सवार को बुलाकर उनसे मिलने को भेज कि वह पूछे क्या सब कुशल है। तब एक घुड़सवार उससे भेंट करने को गया और उसने कहा, राजा पूछता है कि क्या सब कुछ कुशल है। यहू ने कहा, कुशल शेम से तेरा क्या काम, मेरे पीछे चल। फिर पहरेदार ने बताया, संदेशवाहक उनके पास पहुंच तो गया पर लौट कर नहीं आया। तब उसने दूसरा घुड़सवार भेजा, जिसने उनके पास जाकर कहा, राजा पूछता है कुशल क्षेम तो है। यहू ने उत्तर दिया, कुशल क्षेम से तेरा क्या काम, मेरे पीछे चल। तब पहरेदार ने बताया, वो भी उनके पास पहुंच तो गया पर लौट कर नहीं आया। और पहरेदार ने यह भी बताया कि रथ हांकना तो निमशी के पौत्र यहू का सा है, क्योंकि वही उन्मत होकर हांकता है। मित्रवर, यहू का रथ हांकना उसकी एक पहचान था और यहां भी वो उसी के द्वारा पहचाना जाता है। तब आगे लिखा है, तब योराम ने कहा, रथ जुतवाओ। उन्होंने उसका रथ जुतवाया और इसराइल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्या दोनों अपने अपने रथ में निकल पड़े। वे यहू से भेंट करने गए और उसने यज़रेली नाबोत की भूमि में उनसे भेंट की। और ऐसा हुआ कि यहू को देखकर योराम ने पूछा, हे यहू, कुशल क्षेम तो है ना। उसने उत्तर दिया, तेरी माता इजाबेल की वैश्यावृत्ति और जादू टोना के कार्य जब तक इतने अधिक हैं, तब तक कुशल क्षेम कहां। तब योराम रथ मोड़कर भाग चला और उसने अहज्या से भी कहा, हे अहज्या, विश्वासघात। तब यहू ने अपने धनुष की कमान पूरी खींचकर योराम को उसकी भुजाओं के बीच में ऐसा मारा कि तीर उसके हृदय के आर पार हो गया और वह अपने रथ में निढाल होकर गिर पड़ा। तब यहू ने बिदकर नामक अपने एक सेना अधिकारी से कहा, उसे उठाकर यज़रेली नाबोत के खेत में फेंक दे, क्योंकि मुझे स्मरण है जब मैं और तू घोड़े की सवारी करके उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उसके विरुद्ध ये भारी भविष्यवाणी कहलाई थी। यहोवा कहता है, निश्चय मैंने कल नाबोत और उसके पुत्रों का लहू देखा है। यहोवा कहता है, मैं इसी भूमि पर तुझे बदला दूंगा। अब यहोवा के वचन के अनुसार इसे ले जाकर उसी भूमि में फेंक दे। और तब उन्होंने उसको ऐसा ही किया। तब 27वें पद में हम पढ़ते हैं, तब यहूदा के राजा अहज्या ने यह देखा तो वह उद्यान भवन के मार्ग से होकर निकला। यहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही में मार डालो। अतः उन्होंने यिबलाम के पास गूर की चढ़ाई पर उसे मारा, परंतु वह मगिद्दो तक भागा और वहीं मर गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि योराम तो एक दुष्ट राजा था ही, उसको तो मरना था, किंतु उसकी संगति के कारण अहज्या भी, जो यहूदा का राजा था, वो भी मारा गया। इसलिए मेरे मित्र, प्रभु का वचन हमको स्पष्ट रूप में बताता है कि बुरी संगति अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देती है। यहूदा का राजा अहज्या गलत समय में गलत स्थान पर था और गलत व्यक्ति के साथ था, और उसको अपने इस अपराध का भारी मूल्य चुकाना पड़ा। वह मार दिया गया। मेरे मित्र, अनेक बार प्रभु के जन अपनी मूर्खता के कारण ऐसे ही संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें बड़ी समझदारी और बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। 33 से 37 पदों में हम येहू द्वारा इजाबेल की हत्या के विषय में पढ़ते हैं। जब येहू इज़राइल को आया तो इजाबेल ने इसके विषय सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया, अपने सिर को संवारा और झरोके में से झांका। जब येहू ने फाटक में प्रवेश किया तो उनसे पूछा, हे अपने स्वामी के हत्यारे जिमरी, कुशल तो है? तब उसने झरोके की ओर अपना मुख उठाया और कहा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर दो तीन खोजों ने नीचे उसकी ओर देखा। हम देखते हैं कि इजाबेल, जबकि उसकी आयु बहुत हो चुकी है, उसका पति अहाब मर चुका है, वो विधवा है, किंतु उसका सजने संवरने का ढंग अभी नहीं बदला है। वो फाटक में जैसे ही येहू को देखती है, उससे पूछती है, हे अपने स्वामी के हत्यारे जिमरी, कुशल तो है? येहू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु उसने मुंह उठाकर ऊपर जो व्यक्ति थे उनसे कहा, मेरी ओर कौन है? इस पर दो तीन खोजों ने नीचे उसकी ओर देखा। तब उसने कहा, उसे नीचे फेंक दो। अतः उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया। उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और वह पैरों के नीचे कुचल दी गई। मित्रवर, इस तरह का अंत हुआ इस स्त्री इजाबेल का। ये महारानी थी। हमने इसके विषय में बहुत कुछ पढ़ा है। आहाब की मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष बीत चुके थे। इजाबेल ने कभी विचार भी नहीं किया था कि परमेश्वर का वचन इसके जीवन में इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगा। उसे कोई चिंता नहीं थी, वह अपनी गतिविधियों में स्थिर थी। उसने परमेश्वर का खुलकर विरोध किया। उसका यह भी विचार होगा कि अहाब की मृत्यु अकस्मात होने वाली घटना थी। उसका विचार था कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और उसने परमेश्वर के विरोध में और भी कई योजनाएं बना रखी थी। परंतु मेरे मित्र, यहां परमेश्वर का वचन और उनका सिद्धांत पूरा होता है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये इतिहास का अत्यंत दुखद अध्याय है। इजाबेल राजमाता है। वो महल में ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रही थी। एलिया जैसे भयावह व्यक्ति की खतरनाक नबूवत अब तक पूरी नहीं हुई है। सब कुछ सामान्य है। अचानक उत्तर से तीव्र गति से एक रथ आता है। ये येहू है जो अंधाधुंध रथ भगाता चला रहा है। ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। उसे इसी कार्य के लिए अभिषिक्त किया गया है और उसने इस कार्य को पूरा किया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, फिर येहू ने भीतर प्रवेश करके खाया पिया। तब उसने कहा, जाओ उस शापित स्त्री को मिट्टी देने का प्रबंध करो, क्योंकि वह राजा की पुत्री है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तो उन्हें उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों के अतिरिक्त कुछ ना मिला। मित्रवर, ये दशा हुई उस स्त्री की। और आगे लिखा हुआ है, तब उसने कहा, ये तो यहोवा का वो वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहा था, यज़रेल की भूमि पर इजाबेल का मांस कुत्ते खाएंगे। और इस प्रकार से कुत्तों ने उसका मांस खा लिया। मेरे मित्र, प्रभु का वचन इजाबेल के विरोध में क्यों बोलता है? सो आइए, सबसे पहली बात हम देखते हैं, इजाबेल अपने को नबिया कहती है, अर्थात ये झूठी नबिया है। दूसरी बात, प्रभु के सेवकों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तुओं को खाने के लिए सिखाती है। और इस प्रकार इजाबेल की मृत्यु के साथ 9वां अध्याय समाप्त होता है। और 10वें अध्याय में हम अहाब के घराने पर परमेश्वर के दंड के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्याय 10 येहू के द्वारा अहाब के घराने के दंड को जारी रखता है। येहू का क्रूर हृदय अहाब के समस्त घराने को मौत के घाट उतार देता है। ये समस्त कार्य परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हो रहा है जो उन्होंने अपने दास एलिया नबी द्वारा कहे थे। और ये दंड परमेश्वर का न्याय है। पापी अर्थात परमेश्वर विरोधी का अंत है विनाश। परंतु मेरे मित्र, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में पापी व परमेश्वर विरोधी जन को अनंत जीवन प्रदान करने की प्रतिज्ञा दी है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, जैसा कि रोमियों की पत्री के 6 अध्याय के 23वें पद में हम पढ़ते हैं। दूसरे राजा के 10वें अध्याय के 1 से 12 पदों में हम अहाब के परिवार के राजकुमारों की मृत्यु उनके वध के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यहू ने उन 70 राजकुमारों को समाप्त किया। फिर 13वें पद से आगे हम पढ़ते हैं जहां इस प्रकार से लिखा है, यहू को यहूदा के राजा अहज्या के भाई मिले। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, हम अहज्या के भाई हैं। हम राजपुत्रों और राजमाता के पुत्रों का कुशल क्षेम पूछने आए हैं। उसने उनसे कहा, उन्हें जीवित पकड़ लो। अतः उन्होंने उनको, जो 42 व्यक्ति थे, जीवित पकड़ लिया और उन्हें बेत एकेत की बावली पर मार डाला और उसने उनमें से किसी को ना छोड़ा। और इस प्रकार से उसने अहाब के परिवार को नष्ट कर दिया। मेरे मित्र, परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट बताता है कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। तब अग्रिम पदों में हम देखते हैं एक अन्य व्यक्ति से यहू भेंट करता है और यह व्यक्ति है यहोनादाब। यहू निरंतर सामरिया की ओर बढ़ रहा है। मार्ग में उसकी भेंट रकाब वंशी यहोनादाब से हो जाती है। यहू ने उससे संक्षिप्त उत्तर मांगा है, तू शत्रु है या मित्र? जैसा कि यहां 15वें पद में हम पढ़ते हैं, जब उसने वहां से प्रस्थान किया तो उसे रेकाब का पुत्र यहोनादाब मिला, जो उससे भेंट करने आ रहा था, और उसने उसका अभिवादन करके कहा, क्या तेरा मन ठीक है? जैसा मेरा हृदय तेरे प्रति ठीक है। यहोशू ने कहा, यदि ठीक है तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और यहू ने उसे रथ पर चढ़ा लिया और कहा, मेरे साथ आ और देख कि यहोवा के प्रति मेरी कैसी धुन है। मेरे मित्र, आप सोचते होंगे कि यह व्यक्ति यहोनादाब कौन है। यहोनादाब शब्द का अर्थ है परमेश्वर उदार है। परमेश्वर उदार है। परमेश्वर सब पर करुणा दया बहुतायत से करता है। पवित्र बाइबल हमें दो यहोनादाब के विषय में बताती है। इसके विषय में पहली सूचना हमें 2 शमूएल उसके 3 अध्याय के 3 पद में मिलती है। इसके अनुसार राजा दाऊद के भाई शीमा का एक पुत्र था जिसका नाम यहोनादाब था, और इसने अबशालोम की बहन तामार के बलात्कार की योजना बनाई और उसे भ्रष्ट करने में अम्मोन की सहायता की थी। तब उसके बदले में अबशालोम ने अम्मोन की हत्या की। तब यही व्यक्ति था जिसने राजा दाऊद को यह सूचना दी कि अम्मोन के अतिरिक्त अन्य राजकुमार कुशल क्षेम से हैं। दूसरे यहोनादाब के विषय में हमें सबसे अधिक जानकारी यर्मिया नबी की पुस्तक के 35वें अध्याय के 1-19 पदों में मिलती है। यहोनादाब रेकाब का पुत्र था। रेकाब केनी का पुत्र, जो रकाब वंश का संस्थापक था, वह यहोनादाब कहलाता था। अच्छा, इसराइल के मध्य से बाल की उपासना समाप्त करने में ये व्यक्ति यहू का सबसे बड़ा समर्थक व सहायक था। यहोनादाब रेकाब वंशियों के कट्टर घराने का संस्थापक था। वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने यहू की अहाब विरोधी गतिविधियों का समर्थन किया और उसके साथ उसके रथ में सवार होने के द्वारा उसने इस बात का प्रमाण भी दिया। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का विरोध बड़ी सरलता और उत्साह के साथ करते हैं, परंतु परमेश्वर विरोधियों का विरोध करने का हम में साहस नहीं। यूं हम अपने भीतर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को बुझाने के उत्तरदायी हैं, और इस प्रकार हम परमेश्वर के समक्ष वास्तव में नम्र नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं। हम बुराई का विरोध करने से बच रहे हैं, किंतु ये व्यक्ति यहोनादाब परमेश्वर के भक्त यहू के साथ मिलकर बुराई को दूर करता है और दुष्टों का विरोध करता है। तब हम अग्रिम पदों में देखेंगे यहू द्वारा बाल के समस्त पुजारियों का नाश। 18-28 पदों में इस विषय में बताया गया है। अगला मुख्य कार्य है ये जो यहू के द्वारा किया गया। उसने एक झूठा संदेश भेजकर धोखे से बाल के समस्त नबियों को एकत्र किया है, और जब वे सब आ गए तो उसने सबको नाश कर दिया। बाल के आगे होम बलि एक नाटक था। उसने होम बलि का नाटक किया। बाल की उपासना करने का यहू का कोई विचार नहीं था, और इस प्रकार यहू ने इसराइल के मध्य से बाल की पूजा को मिटा दिया, जो कठिन और जोखिम से भरा हुआ कार्य था। परंतु वह जानता था कि परमेश्वर ने इसी कार्य विशेष के लिए उसका अभिषेक किया है। तब 29 से 31 पदों में हम पढ़ते हैं कि यहू ने यारोबाम के पापों का अनुसरण किया। मित्रवर, इसमें कोई संदेह नहीं कि यहू ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अहाब के समस्त घराने का नाश किया और इसराइल के मध्य से बाल की उपासना को समाप्त किया। ये वास्तव में महान कार्य है, किंतु हम देखते हैं कि उसके लिए भी परंतु शब्द का प्रयोग हो गया। 29वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उन पापों से जो नाबात के पुत्र यारोबाम ने इसराइल से करवाए थे, अर्थात सोने के उन बछड़ों से जो बेतेल और दान में थे, यहू अलग नहीं हुआ। मित्रवर, उसने अपना मन परमेश्वर के नबियों की ओर नहीं लगाया। उसका मन पूर्ण रूप से शत प्रतिशत परमेश्वर की व्यवस्था पर लगा ना रहा और उसने परमेश्वर की व्यवस्था को उसकी बातों को सरल बात समझा। परमेश्वर की व्यवस्था व आज्ञाओं को सरल बात समझने के कारण उसे भारी हानि हुई। 32वें पद में हम पढ़ते हैं, उन दिनों यहोवा इसराइल की सीमा को घटाने लगा और हजाएल ने इसराइल की सारी सीमा में उन्हें हराया। ये समस्त कार्य उनकी पराजय के कारण बने और आज भी हम स्थानीय कलीसियाओं में इस हानि को होता देखते हैं। कलीसिया की उन्नति होने की अपेक्षा उनका ह्रास होता जा रहा है और कारण यही है कि कलीसिया परमेश्वर के वचन पर हृदय की सच्चाई और गंभीरता से ध्यान नहीं लगाती है। मित्रवर, सीरिया के राजा हजाएल द्वारा इसराइल को पराजित किया जाएगा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उत्तरी राज बंधुआई में जाने की तैयारी में है। वे असीरिया के राजा द्वारा बंधुआई में ले जाए जाएंगे और इस प्रकार यह अध्याय यहू की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। उसने 28 वर्ष इसराइल पर राज किया, जैसा कि हम 35 और 36 पदों में पढ़ते हैं। सामरिया में इसराइल पर यहू का शासनकाल 28 वर्ष का था और उसके पश्चात उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब इसी के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और यदि आज के अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है hindittb@radiovv.org, hindittb@radiovv.org। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।